घर को बनाने के लिए जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, वजाला बैनकुम मवद्दा, हमने बनाई तुम्हारे अंदर मवद्दत। लफ्ज़ मवद्दत जो है ना, ये वुद से है, वाव दाल दाल। अल्लाह सुबहान तआला का नाम भी है अलवदूद। वुद कहते हैं किसी खैर की उम्मीद रखना। अरबी जुबान में मोहब्बत के लिए बहुत सारे लफ्ज़ हैं जिसमें हुब भी है, मोहब्बत लफ्ज़ भी अरबी का ही है। हुब से वुद ज़्यादा शदीद होती है। जो मोहब्बत है ना, ये सेल्फिश होती है, अपना मतलब है तो मोहब्बत है। मवद्दत जो है ना, इसमें दूसरे की खुशी अजीज़ होती है, कुर्बानी का जज्बा होता है। और जब शौहर और बीवी के लिए ये लफ्ज़ आते हैं ना मवद्दत, तो इसमें जिनसी मोहब्बत आती है, सेक्सुअल लव, जिसको आज के दौर में आप रोमांस कहेंगे, लव कहेंगे, इफेक्शन कहेंगे। इस्लाम ने कहा कि इस जोड़े के बीच में मैंने मवद्दत रख दी। शादी के शुरू के दिन होते हैं ना, तो ये मवद्दत गालिब होती है, अट्रैक्शन है, नई चीज़ की कशिश होती है, ये एक इंसान की फितरत है। शादी के आगाज़ के जो दिन होते हैं उसमें इंसान को ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, पहनना, ओढ़ना, बात करना, घूमना फिरना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें मवद्दत में आती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जब मवद्दत कम हुई, लड़की अब तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई, उसकी अट्रैक्शन कम हो गई, उसकी नरमी नज़ाकत ख़त्म हुई, तो कहा अब उसको छोड़ना दो कि थैंक यू नो मच, नो इट्स फाइन। वेस्ट ने मवद्दत पे रोक दिया, लव एट फर्स्ट साइट और डाइवोर्स एट सेकंड साइट होगी शायद। जितनी देर मोहब्बत रही, अट्रैक्शन रही, लड़की खूबसूरत लगी, रखा, और जूं ही दिल भरा छोड़ दिया। मैं सफ़र करते हुए बहुत दुखी होती हूँ, मैंने ये देखा है कि हमेशा बच्चा जो है वो माँ के साथ होता है, कसरत से। शायद आप इस चीज़ को फील करते हैं कि नहीं, बहुत कम आप देखेंगे अपने इर्द गिर्द के मर्द, औरत और एक बच्चा जा रहे हो। आप रोड पे जाते देखें, ट्रेन्स में सफ़र करें, बसों में करें, बच्चा और माँ दिखेगा आपको। ये वेस्ट का अलमिया है कि ये बच्चे इन माओं के पास रह गए, इनके मर्द पता नहीं किधर हैं। कुछ तो वैसे बगैर शादी की पैदावार हैं, और जिनकी शादियां होती हैं वो बच्चा पैदा होते कहते हैं अब तुम तो वो रही नहीं डार्लिंग, डार्लिंग अब तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देती, खुदा हाफिज़। बाज़ दफ़ा अपने बच्चों को दुश्मन समझते, अपना छोड़ के चले गए। इस्लाम ने कहा कि ये मवद्दत थी, अब वक्त के साथ वो बूढ़ी हो गई, कमज़ोर हो गई, तुम्हारे बच्चों की माँ बन गई, अब उसको छोड़ना नहीं बल्कि वराहमा, अब उस पर रहम करो। यह है बुढ़ापे की मोहब्बत, यह है बीमारियों वाली मोहब्बत। हर बीवी सारी ज़िंदगी को नाजुक पड़ी नहीं रहती। शादी के फ़ौरन बाद बाज़ बीवियाँ बीमार हो जाती हैं, कोई हैंडीकैप हो जाता है, कोई परेशान हो जाता है, कहा फिर उस वक्त उस पर रहम खाओ, छोड़ना दो। वो लड़की से औरत बनी है तुम्हारे घर में आकर, वो एक नाजुक अंदाम हसीना से एक औरत बनी है, एक ऐसी औरत बन गई है कि जिसको अब ज़रा ज़माने की धूप छाँव पता चली तो इसके ज़िम्मेदार तुम हो, अब उसको छोड़ना दो। इस्लाम की ये खूबसूरत चीज़ है कि उसने घरों को बचाने के लिए सिर्फ जिस्मानी अट्रैक्शन नहीं बल्कि रहमत भी रखी। बास कहते हैं कि मवद्दत औरत में ज़्यादा होती है और रहमत मर्द में होती है। बास कहते हैं नहीं, मर्दों में मवद्दत ज़्यादा है, रहमत औरत में है, और बास कहते हैं दोनों में दोनों ही हैं। लेकिन आप देखें तो मुझे तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगती है कि जब दिल चाहे के साथ रहो, अच्छा लग रहा है सब कुछ तो मवद्दत है, लेकिन जब दिल मैले हो रहे हैं, दिल खट्टे हैं, दिल नहीं अच्छे, तो फिर रहमत ले आओ। सोचो कि अगर इस औरत को छोड़ूंगा तो पीछे और कोई औरत ही मिलनी है ना, कोई परी तो नहीं ले लेनी, और अगर इस मर्द को छोड़ूंगी तो क्या दूसरा मर्द कोई मेरी मर्जी का बन के आएगा। शादीशुदा ज़िंदगी की कामयाबी का राज समझौता है, शुक्रगुजारी, कदरदान रहे। जो मिल गया वो मेरा हक नहीं था, जो नहीं मिला मैं उसको डिज़र्व नहीं करती थी, इससे भी तो ख़राब मिल सकता था, मैं क्या हूँ, मैं अल्लाह की नज़रों में पता नहीं कैसी हूँ। याद रखिए, सिर्फ इन जज्बात से सुकून आएगा। औरत में कनात हो, सब्र हो, शुक्रगुजारी हो, वो माँ बाप के फैसलों को रोती ना रहे, ताने ना देती रहे, और ना मर्द अपनी माँ को कहे कि तुमने मेरे गले डाल दी, जो थी थी, तुम चाहते थे कि नहीं चाहते थे, अब ये तुम्हारी है, तुम इधर आना चाहती थी कि नहीं आती थी, अब तुम आ गई हो, दैट्स इट, समझौता रहो। इन नफी ज़ालिकल आयात लिकौम यतफक्करून, تفکر کرنے والی قوم، غور و فکر کرنے والی قوم کو اس میں نشانیاں ملیں گی، باقیوں کو نہیں ملیں گی۔ جو لوگ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کی ذات نے گھروں کو جوڑنے کی یہ تین چیزیں بتا کر ٹوٹتے ہوئے گھروں کو بچا لیا۔ اور جب انسان ہو گئے مادہ پرست، مٹیریلسٹک اپروچ ہے، سکون بھی گیا، مودت بھی گئی، رحمت بھی گئی، خوبصورتی کو انہوں نے نہ جانے کیا سمجھا۔ اور اب دیکھیے کہ انسان کے جذبات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ کیا جوانی میں بھی ہر وقت بندہ مودت کے موڈ میں ہوتا؟ کیا ایک کپل جو نیولی میرڈ ہے، آپ ان کو صرف حسن اور خوبصورتی پہ رکھ سکتے؟ نیند آئے گی، سب سے پیاری آپ کو نیند لگے گی، بھوک آئے گی، سب سے پیاری بھوک لگے گی، کھانا لگے گا، تھک جائیں گے، آپ کو بستر اچھا لگے گا۔ زندگی اس گلیمر پہ نہیں گزرتی جو آج ہمیں میڈیا سے دکھایا جاتا ہے۔ بہت بڑی ایک بنیادی وجہ جو گھروں کے ٹوٹنے کی بنی وہ فلمیں اور فکشن ہے۔ اس میں تو ہیرو اور ہیروئن دکھتے ہیں نا، عملی زندگی تو دکھ ہی نہیں رہی۔ وہ تو دیکھتے ہیں ہمارا ایک خوابوں کا گھر ہے، نہ اس خوابوں کے گھر میں ساس تھی، نہ نن تھی، نہ بیوی کے میکے تھے، نہ اس کے گھر والے تھے۔ اس میں تو وہ ایک پہاڑ پہ جا کے گانا گاتے ہیں اور کسی درخت کے نیچے ایک چھوٹی سی کٹیا میں آ کے سو جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہاؤ لکی دے آر۔ اور اگر آپ کو بھی ایسا ایک گھر بنا دیا جائے، نہ بجلی نہ پانی، تو آپ کہیں گے مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی، کوئی شیر ہی نہ آ جائے۔ حقیقت اور فکشن میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ریئلسٹک لائف کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان خوشی غم دونوں کے ساتھ چلے، دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، جانور نہیں بنایا۔ جب تک ہم ساری چیزوں کو ساتھ لے کر نہیں چلتے، بات نہیں بنتی۔ تو بات کا خلاصہ کرتی ہوں، آپ میں سے ڈیٹیل سننا چاہیں کوئی، موسٹ ویلکم، ویب سائٹ سے سن سکتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ بات اپنے عمل کی سمجھ آ جاتی ہے۔ لڑکیوں میں مزاج میں برداشت ہونی چاہیے، دینے کا مادہ ہونا چاہیے، اور مردوں کے مزاج میں لینے کا مادہ ہونا چاہیے۔ جو قربانی بیوی کر رہی ہے، جو ہدیہ آپ کو پیش کر رہی ہے اپنی زندگی کا، اس کو قبول کر لیں۔ آپ کا دماغ ہی نہ خراب ہو جائے کہ یہ عورت پتہ نہیں کیوں میرے اوپر اتنا بچھی جا رہی ہے، میرے بغیر اس کا گزارا نہیں۔ وہ بھی شکر کرے کہ مجھے دیا کہ ماں باپ نے۔ دیکھیے ہر لڑکی ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے۔ کوئی بھائی ایسے نہیں ہوتے کہ بہن کو پال نہ سکے، کھلا نہ سکے۔ یہ کیوں دے کے آتے ہیں؟ اس مودت کی وجہ سے۔ اب دیکھیے کہ اگر ایک عورت اپنا گھر بنانا چاہتی ہے نا، تو وہ سوچے کہ میری شادی سے پہلے میرے مرد کی زندگی میں کیا کمی تھی۔ یا چھوٹی سی ایک اور سائڈ ایشو پہ بات کرتی ہوں جو بہت بڑی وجہ ہوتی ہے گھروں کے ٹوٹنے میں۔ بنیادی وجہ شاید یہ ہوتی ہے، لیکن اس کے نام مختلف طرح کے سامنے آتے ہیں۔ ایک لڑکی جب کسی مرد کی زندگی میں آتی ہے، کیا کمی تھی اس کی زندگی میں؟ کھانا ملتا تھا اس کو شادی سے پہلے؟ ملتا تھا۔ ماں سے اچھا کون کھلائے گا؟ کپڑے دھلے ہوئے ملتے تھے، کمرہ صاف ملتا تھا، سب کچھ ماں بہنیں تو لاڈ چاؤ سے کرتی ہیں۔ ایک چیز نہیں تھی کہ اس کی وہ کمپینین شپ جو ایک بیوی سے ملتی ہے وہ نہیں تھی۔ اسی کے لیے لڑکے باہر دھکے کھاتے ہیں، فرینڈ شپس ہے، کھانے پینے، دس اینڈ دیٹ۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بنیادی چابی دے دی کہ جس کے ذریعے وہ مرد کے مزاج کو قابو میں لے آتی ہے، اس کے غصے کے آگے قابو ڈالتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ عورت کا اپنے آپ کو مرد کے لیے پیش کرنا۔ اب دیکھیے کہ بہت سارے گھروں کے ٹوٹنے کی جو وجہ ہوتی ہے نا، وہ جنسی تعلق کی غیر ہمواریت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں جو اس کی میری نظروں میں چیزیں آتی ہیں وہ چند رکھتی ہوں، شاید اس میں سے کسی ایک وجہ کو ٹھیک کرنے سے گھر بچ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس صورت میں آتی ہے، جو میں نے پچھلے کئی سالوں میں بہت کلوزلی آبزرو کی ہے لوگوں کے اندر، وہ کیا ہے کہ لوگ شادی کر لیتے ہیں، بچہ پیدا نہیں کرتے۔ کیا وجہ؟ ابھی بچے کے لیے تیار نہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی سیٹ ہو رہے ہیں، ابھی کمانا ہے، ابھی اوور نائٹس ہیں، ذرا بچے بعد میں پیدا کریں گے۔ آپ اس لیکچر میں سنیں، میں نے ایک سسٹر کا پورا قصہ سنایا ہوا ہے کہ جنہوں نے شادی کے 10 سال تک بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دیا، اللہ کا حکم تھا، ورنہ بندے کی کوششوں سے کیا ہوتا ہے۔ اور جب شادی کے 10 سال کے بعد غالباً بچہ پیدا ہوا، ٹوینز ہوئے، اور صرف 3-4 سال کے وہ بچے ہوئے، تو سڈنلی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور اب وہ 15 سال کی شادی شدہ عورت جو ہے، وہ 2-3 سال کی عمر کے بچے لے کے تنہا جی رہی ہے۔ اور اس کی وہ لفظ مجھے نہیں بھولتے کہ اگر ہم نے یہ ڈیسیزن نہ لیا ہوتا تو چلے، جب میرا شوہر فوت ہوتا تو میرے بچے کوئی 13-14 سال کے تو ہوتے، کچھ یہ بھی تو اپنے باپ کے ساتھ رہتے۔ اب یہ کھونی چھتنی بات ہے، میں نہیں کہہ رہی کہ اس کا کچھ سے تعلق ہے، لیکن جب بچہ بیچ میں آ جاتا ہے نا، تو مودت اور رحمت کے جذبے غالب آ جاتے ہیں۔ ये फितरी बॉन्ड है, ग्लू है। पहले दौर में लोग कहते थे कि बच्चा औरत की फौज होता है। जितने बच्चे पैदा होते जाते हैं ना, औरत के कदम उस घर में जमते जाते हैं। पहले औरत दबी भी होती है, यकीन करें, आप खुद देखें, आप भी माए हैं, बच्चा पैदा होने के बाद आप भी अब ज़्यादा घुराती हैं, आपको पता, जाने कहाँ देंगे। और अपनी कदर करानी है, बच्चा छोड़ दें थोड़ी देर मियाँ के पास, आ जाएं स्कूल में, फिर देखें ज़रा पीछे से जो फ़ोन आते हैं गुस्से से भरे हुए कि ये इसको ले जाओ। बच्चा बहुत बुनियादी अहमियत है। जो लड़की लड़के आज के दौर में कपल किसी वजह से भी अपने आप को इस चीज़ से दूर करते हैं ना, रिश्ता दिन ब दिन दूर होता है। यकीन करें, अल्लाह ने फितरी निज़ाम रखा है, मर्द लड़का नहीं रहता बच्चा पैदा होने के बाद, वो मर्द बन जाता है। वो लड़के जो शादी कर लेते हैं लेकिन माँ बाप ही उनके लाड़ चाव देख रहे होते हैं ना, जो ही उन 20-22 साल के लड़कों के घर में पहला बच्चा होता है ना, तो उनको बिल्कुल एक जिम्मेदार शहरी बनते देखा गया। फितरी तौर पे उनके अंदर जज्बात है। फिर आप देखिए, जो बच्चा होता है उसकी तैयारियां शौहर बीवी को कितना करीब करती हैं। वो छोटी छोटी सोचें, छोटे छोटे गम अंदेशे, बात बात में तबीयत बिगड़ रही है, औरत का मिजाज बिगड़ रहा है, मर्द लाड देख रहा है, नखरे देख रहा है, फिर डॉक्टर्स पे लेके जाना, फिर डिलीवरी के मामले, बच्चे की तैयारियां, एक एक कपड़ा वो खरीदते हैं। क्या आपका ख्याल है इससे आपस में ताल्लुक मजबूत नहीं होता? बिल्कुल होता है। वो छोटी छोटी बातों पे यूं होते हैं, रंग उड़े होते हैं उनके। बच्चा पैदा क्या हो जाए, वो शौहर और बीवी ऐसे लगता है कि उनको एक चिड़िया का बच्चा मिल गया, हर वक्त उसके पीछे लगे हुए। बाज दफ़ा वो जाग रहा है, कभी वो जाग रही है, अब आप कर ले, अब वो कर ले, ये बॉन्ड बनते हैं। फितरत चाहती है इन चीज़ों को। क्या करना है आपने पढ़ के, क्या मिलेगा आपको उस पढ़ाई से, आपने जॉब करके क्या करना है? देखिए, इंसान अपनी ज़िंदगी में एक गोल रखे, मुझे बनना क्या है, पुरसकून घर लीता सुकूनू इलेगा या दौलतमंद लेडी, मिस वर्ल्ड बनना है, खूबसूरती। बस लोग सिर्फ इसलिए बच्चे पैदा नहीं करते कि औरत की खूबसूरती ढल जाएगी, फिगर ख़राब हो जाएगा। ये तो ऐसे ही आप घर में फ्रिज ले आएँ और उसको चलाएं ना, कि नहीं इसमें चीज़ें रखी तो ख़राब हो जाएगा, ये गंदा हो जाएगा। वैक्यूम क्लीनर है, चलाया तो इसमें मैल फंसेगा। चीज़ों को जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो उनकी उम्र बढ़ती है। खाली मशीन रख दे बंद करके कुछ दिन, जंग लग जाएगी। गाड़ी चलती चलती बंद करें, 6 महीने में बैटरी डाउन होगी। औरत जब फितरी तौर पे माँ नहीं बनती ना, तो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो औरतपना ख़त्म हो जाता है। फिर इसी गैर हमवारियत में एक दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चे को तो एक साइड पे कर दे, शोहर बीवी साथ नहीं रहते। और इसमें अमूमन पहले दौर में तो जो जुल्म था वो ये था कि लड़के बाहर कमाने चले जाते थे, औरतें बेचारी पीछे रह गईं। अब जब पीछे रह गईं तो अब जुदाई की जुदाई, मर्द मर्द है पीछे, बाहर हुसन गंदगी चारों तरफ। तो आग लगाने वाले जज्बात को भड़काने वाली चीज़ें हैं, उनकी इस्मत पाक रहती है नहीं रहती, उनकी नज़रें पाक रहती है नहीं, और वो कहेंगे मजबूर हैं, अल्लाह हम मजबूर हैं, हम तो बच्चों के लिए कमाने आए हैं, औरतें पीछे धक्के खाती हैं। और ऐसी गंदगियाँ भी आप सुनते हैं कि मर्द बाहर गए, औरतों ने पीछे किसी ड्राइवर से मुआशका लगा लिया, किसी दोस्त से लगा लिया, वो कहती हैं कि हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। शोहर और बीवी का बग़ैर वजह के दूर रहना या वजह के साथ भी एक ख़ास वक्त से ज़्यादा दूर रहना, ये इस रिश्ते को तोड़ देता है। अल्लाह ताला ने ये इतना सीक्रेट रखा है मामला कि जिसके साथ कितनी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, कितनी नाराज़गियाँ रंजिशें इस ताल्लुक़ की बुनियाद पर ठीक हो जाती हैं, एक दूसरे की ज़रूरत है। इसलिए बग़ैर वजह के कोई भी रीज़न है, देखिए इसको बिग क्रॉस लगाएंगे ना तो फिर रास्ते भी निकल आएंगे। और जब हम एक चीज़ को हाईलाइट करके देख लेते हैं ना कि नहीं ये तो करना है, तो फिर दूसरी तरफ गड़बड़ शुरू हो जाती है। आप खुद फील करें, चले शोहर बीवी के ताल्लुक को एक साइड पे करें, कि आप ये महसूस करते हैं कि आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं आपको उनसे ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है, जिन रिश्तेदारों से आप नहीं मिलते बहुत देर, इवन सगे बहन भाई, आप यहाँ रहते हैं तो आपको लगता है कि आपकी अपनी ज़िंदगी, आप उनके लिए दुआ करते हैं, अच्छी तमन्ना रखते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बेचैनियाँ ख़त्म हो जाती हैं जो भाई बहनों में होती हैं। आप पाकिस्तान जाएँ, आप उनके साथ 8-10 दिन रहें, वो आपके लिए लाड कर रहे हैं, ये ला रहे हैं, ये खिला रहे हैं, वहाँ ले रहे हैं जा रहे हैं, आते हुए आपके आंसू क्यों निकलते हैं? क्योंकि आप पास हुए, आपके वो दिल की मट्टी फिर नरम हो गई, फिर वो भाई बहन की मोहब्बत आ गई, आप कहते हैं हाय मेरे भाई इतने केयरिंग है, इतना प्यार करते हैं मेरे से। फिर आप आते हैं रास्ते में रोते धोते आते हैं, अपने मुल्क में आते हैं, फिर अनपैकिंग करने में फिर भूल भाल जाते हैं। जिसके भी आप पास रहेंगे आपको उससे मोहब्बत होगी। कोई बिल्कुल आम सी शक्लो सूरत का बच्चा होगा ना आपके घर में, किसी हमसाए का ही, आप उसको रोज़ देखेंगे आपको अच्छा लगने लगेगा। और आपका अपना प्यारा कोई भाई बहन का बच्चा, अपने करीबियों का बच्चा कुछ अरसा आप ना देखें, आपको याद ही नहीं आता। मैंने देखा है घरों में पोते पोतियां होते हैं ना, वो घर में होते हैं ऐसे लगते हैं इनके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजरेगी, हाय कैसे हम रहेंगे इनके बगैर। जब वो चले जाते हैं एक आध दिन ज़रा से आंसू आते हैं, याद आता है, बाद में वो कहते हैं शुक्र है घर गंदा नहीं होता, घर तो साफ ही रहता है, बस दूर से हाय बाय करें। करीब रहने से जैसे आप पॉजिटिव नेगेटिव को साथ रखते हैं ना, तो इसमें अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इसमें अट्रैक्शन है। इस तरह शौहर बीवी जितना साथ रहते हैं उनका ये बॉन्ड मजबूत होता है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। फिर तीसरी इस रिश्ते के अंदर जो खराबी लड़कियों औरतों की तरफ से देखी गई है कि वो बिला वजह मर्द का ये हक नहीं देना चाहती कभी किसी नाम से। और उसमें भी फिर जो चीज़ सामने आती है वो फितरत का वही असूल टूटा है कि औरत को सुबह उठ के जॉब पे जाना है, रात को थकी हुई आई है। अब एक औरत जिसको अल्लाह ने हल्का फुल्का सा लाइट सा काम दिया कि तुम बस इस घर को साफ कर लिया करो, फिर थोड़ा आराम कर लो, फिर उठ के एक बस थोड़ा सा खाना पका लो, फिर थोड़ा सा घर की सफाई करो, शाम तक मर्द आएगा, तुम साफ सुथरी नहा धो के अपने आप को सजा के उसके इंतजार में बैठो, वो आए खाना खाओ, फिर वो उससे बातें करेगी, उसके साथ जागेगी, उसको खुश रखेगी, यही काम था उसका। जब आपने औरत को मर्द के साथ ही बराबर बल्कि मर्द से पहले घर से निकाल दिया, गई वो जॉब पे, मर्द अभी सो रहे हैं, औरतें घरों से बाहर हैं, शायद ये 80% घरों में ऐसा होता है। अगर आपको कुरान के लिए निकलना पड़े शोहरों से पहले तो गम ना खाएं, इस शहर की शायद 80% खवातीन मर्दों से पहले जाती हैं, क्योंकि उनकी जॉब्स के लेवल मर्दों से ज़रा नीचे के होते हैं, तो उनको कुछ ज़्यादा मुश्किल सहनी पड़ती हैं। अब एक औरत गई घर से सुबह मर्द से पहले, पहले तो वो सुबह नाश्ता नहीं करा के जाएंगी, बल्कि बाज़ मर्द उनके लिए बना के बैठे होते हैं कि आप करके जाएं, बेगम भूखी ना जाएं, ऐसे भी होते हैं लोग। अब औरत सारा दिन मशीन बनी, मैं कहती हूँ कि औरत घर से बाहर जाके कुछ ना करे, सिर्फ कुर्सी और मेज़ सजा के बैठी रहे ना ऑफिस जॉब में, औरत थक जाती है। फितरत है औरत की कि औरत अपने घर में मुतमईन रहती है। अब बाहर से वो जब थकी हारी फिर रास्ते की सोबते तय करती गई, घर वो बना हुआ है जैसे अस्तबल बना हुआ है, सारा घर ही ऐसे है कि यहाँ हो क्या गया। अब बताएं वो थकी हुई औरत क्या वो खाना पकाएगी, क्या वो घर साफ करेगी, या अपने आप को शौहर के लिए सजा संवार के तैयार रखेगी। वो कहेगी खाना पक जाए, खाना ना पका मियाँ ने भी धाड़ना शुरू हो जाना, घर साफ ना हुआ तो सास को गुस्सा आने लगना है। अब औरत तो वो कहते हैं ना कि दो पाटों के बीच की चीज़ बन के पिसती है, बड़ी मुश्किल से वो ये ज़रूरियात पूरी करती है, साथ ही उसको फिक्र लग जाती है सुबह फिर जाना है 7 बजे, नज़र तो उसकी घड़ी पे, कल के लिए फिर कुछ कच्चा पक्का पका जाऊँ, कुछ सुबह के कपड़े इस्त्री कर लूँ। आप बताएं वो औरत जब रात को सोएगी क्या अपने शौहर को खुशी देगी, कहाँ मवद्दत आई। औरतों को जब हमने ओवर बर्डन कर दिया ना तो वो बीवियाँ नहीं रही, और मर्द भी कॉम्प्रोमाइजिंग हुए, क्योंकि उनको पता है कि डॉलर्स आएंगे इसके बाद, जाने दो कुर्बानी दे रही हैं कोई बात नहीं, खैर पैसे तो हमारे घर में आएंगे, वो सब कुछ हुआ। अब औरत ने कमाया, अब एक और मसला शुरू हो गया कि ये आपका है या मेरा, ये आप इस अकाउंट में हम का नाम क्यों लेते हैं भाई, ये तो मेरा अकाउंट है। फिर वो नए मसले शुरू हो गए, मैं अपना पैसा खर्च कर, यानी 100 बातों की एक बात, फितरत के आगे जितना सर फोड़ेंगे ना उतना सर टकराएंगे। आज सिर्फ दीन समझने वाले या कम अज़ कम मुसलमान औरतें अपने इस हक़ को समझते हुए अपने घरों को पुरसकून कर लें, वही मर्द ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। ये जो आज नारा है ना कि औरत भी काम करे मर्द भी करे फिर मुल्क तरक्की पाएंगे, ये गलत है। औरतें घर इतने पुरसकून बना लें कि वही काम जो मर्दों ने 10% करना था ना वो 20% करके आएंगे। जब घर में सुकून नहीं होता ना, ऑफिस जाके भी मर्द सिगरेट ही फूंकते रहते हैं, फिर उनको भी हर वक्त बेगम ही की बातें याद आ रही होती हैं। अल्लाह का निज़ाम खूबसूरत था, हमने इसको समझा नहीं, नतीजा क्या निकला कि हम अपने आप को दूसरी तरफ ले गए। ये नहीं हो सकता कि हर वक्त हालात एक ही जैसे रहेंगे, इंसान के जो जज्बात हैं ना ये ज़िंदा चीज़ है, और ज़िंदा इंसान मुख्तलिफ तरह के होते हैं, झगड़े भी होंगे, छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी होंगी, कभी मैं तुमसे नहीं बोलती, मैं तुमसे नहीं बोलता, ये कैफियत होगी। लेकिन अगर किसी जोड़े में बिल्कुल ही मोहब्बत नहीं है ना, जो कि एक वाक्या आता है हुला का कि अल्लाह के नबी ने साद बिन कैस की जो बीवी जमीला थी तो उनको कहा कि भाई तुम उनसे रह लो ना, कि अल्लाह के नबी मैं उसके साथ रह ही नहीं सकती, मुझे अच्छे ही नहीं लगते। जब इस किस्म की तबीयत उचाट हो ना फिर साथ नहीं रहना चाहिए, फिर हम जितना साथ रहते हैं ना उतना वक्त ज़ाया करते हैं। तो फितरी तौर पे कभी मोहब्बत कभी सख्ती कभी गुस्सा भी कर सकती औरत, कभी अगर वो उसके पाँव दबाती है तो कभी पाँव दबवा भी सकती है, कोई अल्लाह ताला ने एक हार्ड एंड फास्ट ये नहीं कर दिया कि औरत बस हर वक्त जो है वो जी हुजूरी करती रहे, और यकीन करें जो देते हैं वो लेते हैं। आप एक दफा बात मान के कई बातें मनवा सकते हैं। आप एक दफा झुकें, आप कितना झुका देंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र होता है। मैं कहती हूँ सिर्फ शादी के 1 या 2 साल लड़की सब्र कर जाए, ये वो बॉन्डिंग कैफियत होती है जिन दिनों में रिश्ता बनता है। इन दिनों में औरत सब्र कर ले, बाकी सारी जिंदगी मर्द सब्र करेगा। वो गलत फहमी का शिकार हो, एक दफा आप अपनी जगह बना लें, उसको यकीन आ जाए कि आप उसकी मुखलिस हैं, आप उससे प्यार करती हैं, आप उसके पैसे की, उसकी घर वालों की बड़ी सिंसियर हैं। एक दफा मर्द को ट्रस्ट दे दें, फिर देखिए क्या होता है। अब एक छोटी सी मिसाल से समझाती हूँ आपको। गले में आपने माशाल्लाह पहनी होती होंगी चेन्स, कितनी भी भारी चेन आप बनवा लें, महंगी 5-6 तोले की भी बना लें, जहां एक कड़ी में दूसरी कड़ी डलती है वो जगह कितनी नाजुक होती है, जंजीर कितनी मोटी है, लेकिन ये कोना जरा सा खुल गया ना चेन गिर जाएगी। अब ये सोचें ये औरत का तरफ है, ये मर्द है। जिस वक्त ये रिश्ता जुड़ता है ना, नया नया शुरू शुरू के दिन, आप तो कहते हैं ना ये लाड और चाह के दिन है, ये बड़े नाजुक दिन होते हैं, इन दिनों में थोड़ा सा सब्र कर ले, ये जोड़ के दिन है। जब ये जोड़ पक्का हो गया इंशाल्लाह फिर खींचेंगे भी तो जंजीर नहीं टूटेगी। शादी का शुरू के 2-3 साल अगर औरत थोड़ी सी दबी रहे, थोड़ी सी नरम रहे, और मर्द भी सब्र करे, दोनों के लिए एक बात है, क्योंकि सुकून एक बंदे के हाथ से नहीं मिलता। आप देखेंगे कि वक्त के साथ फिर गलत फहमियाँ कोई डालेगा भी तो नहीं डलती। शुरू में खुद ही नहीं पता होता, इसलिए दूसरों से पूछते फिरते हैं, कोई मिसगाइड कर दे तो चल पड़े। अपनी अकल से सोचें, अपनी आंखों से देखें, और ना दूसरों से उनके मर्दों की और बीवियों की बातें पूछनी चाहिए, क्या देते हैं, क्या लेते हैं, क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं। हमारे यहाँ तो मसला ये ना कि ऊपर वाले लोग भी बहुत खराबियाँ पैदा करते हैं।